रात के 9 बज रहे थे। राधिका की बेचैन निगाहें बार बार दरवाजे की ओर घूम रही थीं। अजीब सी व्याकुलता और घबराहट ने मन को घेरा हुआ था। कई बार माधव को फोन कर चुकी थी पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। उसे शिद्दत से माधव का इंतजार था। सारे दिन में एक पल चैन न आया था उसे, और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी तो राधिका गेट की ओर दौड़ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने माधव उदास चेहरे के साथ खड़ा मिला। उसके चेहरे पर उदासी देखकर राधिका भी मायूस हो गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही माधव उसके साइड से निकलकर अंदर चला आया। घर का कुछ सामान लाया था वो, जिसे रसोई में रखने चला गया, और जब आया तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा मौजूद था और लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैली हुई थी। दरवाजे पर खड़ी राधिका अपने ही ख्यालों में उलझी उदास और मायूस सी खड़ी थी, जब माधव की खुशी से खनकती आवाज़ सुनकर चौंकते हुए होश में लौटी। मम्मी, मुंह मीठा कीजिए। राधिका ने देखा तो माधव अनुपमा जी को मिठाई खिला रहा था और उसका चेहरा खुशी से झिलमिला रहा था। राधिका अचरज में पड़ गई और आंखें बड़ी बड़ी किए हैरान परेशान से उसे देखने लगी। मुंह तो मीठा कर ले बेटा, पर पहले बताओ तो सही कि ये मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है। अनुपमा जी ने अपने बेटे के खुशी से खिले चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए सवाल किया। मम्मी, खुशखबरी तो ऐसी है कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने लगेंगी। माधव ने खुशी व एक्साइटमेंट से भरे स्वर में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी कुछ उलझन में पड़ गईं। ऐसी कौन सी खुशखबरी ले आए तुम? खुशखबरी मैं नहीं मम्मी, आपकी बहू लाई है। माधव की निगाहें गेट पर खड़ी राधिका पर पड़ी, जिसे अब कुछ कुछ बातें समझ आने लगी थीं, पर अब भी वो हैरान परेशान से उसे देखे जा रही थीं। आप कहना क्या चाहते हैं बेटा, साफ साफ कहिए ताकि हम समझ सकें। अनुपमा जी की बात सुनकर माधव ने मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखा और उनकी हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। मम्मी, कल आपने पोते पोती की इच्छा जाहिर की और आज आपकी बहू ने आपकी इच्छा पूरी भी कर दी। इसके बाद पल भर ठहरते हुए उसने खनकते स्वर में आगे कहा, राधिका माँ बनने वाली है मम्मी, और आप दादी। अनुपमा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो फटी आंखों से अचंभित से उसे देखने लगी। सच कह रहे हो बेटा? सच मम्मी, अभी डॉक्टर से मिलकर रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। राधिका सच में माँ बनने वाली है। भगवान ने आपकी सुन ली और आपकी दादी बनने की इच्छा पूरी कर दी। बहुत जल्द आपके पोते पोते की किलकारियाँ इस आंगन में गूंजेंगी। जी भरकर प्यार कीजिएगा आप उसे। माधव जितना खुश था उतना ही भावुक भी नजर आ रहा था। बोलते हुए उसका गला रुंध गया था और आंखें छलक गई थीं। खुशी ही इतनी बड़ी थी कि उससे संभाले न संभल रही थी। ऐसा ही कुछ हाल अनुपमा जी का भी था। उनकी बूढ़ी आंखों ने जाने कब से एक यही सपना देखा था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा था। उसने माधव को दुलारते हुए उसके चेहरे को चूम लिया। झिलमिलाती आंखों से मुस्कुराते हुए राधिका की ओर बढ़ गई। उसके गाल को अपनी हथेली से छूते हुए वो भावुक हो गई। आज आपने हमें दादी बनने की खबर सुनाकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। जब से आपने हमारे घर में कदम रखा है, इस आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। जाने कब से हमारे मन में यही इच्छा थी कि मरने से पहले अपने बेटे के बच्चे का मुंह देख लें। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दें, बुरी नज़र से बचाएं, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। अनुपमा जी इतनी खुश थीं कि उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो रसोई से राई और मिर्च ले आईं और राधिका के सर के आसपास घुमाते हुए कुछ बड़बड़ाने लगीं, फिर उसे आग में झोंक दिया। माधव मिठाई ले आया तो उसे भगवान के आगे चढ़ाकर हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करने लगीं, फिर खुद ही मिठाई राधिका और माधव को खिलाकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया। खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी और रह रहकर वो राधिका को बस आशीर्वाद ही दे रही थीं। उनकी आंखें बार बार भीग जा रही थीं। राधिका और माधव नम आंखों से उन्हें देख रहे थे। गलत साबित हुए थे वो, उन दोनों से कहीं गुना ज़्यादा खुश आज अनुपमा जी थीं। रात के खाने के बाद राधिका सब काम निपटाकर कमरे में पहुंची। उसकी प्रेगनेंसी की खबर खुद अनुपमा जी ने आशुतोष जी को दी थी और अब वो जल्दी से जल्दी वापस यहाँ आना चाहते थे। राधिका ने बात की थी उनसे और उनकी रुंधी आवाज़ सुनकर उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा लिया था। अभी बस चंद करीबी लोगों को ही इस बारे में बताया गया था। शुरुआती वक्त था और अनुपमा जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उनका कहना था कि ऐसे में नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। राधिका और माधव दोनों ही उनकी भावनाओं को समझ रहे थे और सम्मान भी करते थे। अनुपमा जी ने अपने अनुभवों के आधार पर कितनी हिदायतें दी थीं उसे। घंटे भर बैठकर उसे सब समझाती रहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बच्चे के लिए सही है और क्या नहीं, इस हालत में उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही उन्होंने कितना कुछ सोच भी लिया था कि अब राधिका को क्या क्या बनाकर खिलाना है, कैसे उसका और बच्चे का ख्याल रखना है। कुछ पाबंदियां भी लगा दी थीं उस पर, जैसे अब ज़्यादा भारी नहीं उठाना, लगातार ज़्यादा काम नहीं करना, चिंता फिक्र से दूर रहना है, खुश रहना है, और भी बहुत ही छोटी बड़ी बातें थीं जिन्हें राधिका और माधव दोनों ने ही अपने दिमाग में बिठा लिया था।
राधिका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक ऐसा होने पर राधिका चीख गई, पर बिना कुछ बोले उस शख्स की बाहों को अपने पेट पर से हटाते हुए दूसरी तरफ चली गई। पीछे खड़ा माधव अचरज से उसे देखता ही रह गया। राधिका ने बिस्तर झाड़ा और जैसे ही तकिए ठीक से लगाने लगी, माधव ने फिर उसकी कमर व पेट पर अपनी बाहों को लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। राधिका की पीठ माधव के चौड़े फौलादी सीने से चिपक गई। उसकी कमर पर अपनी बाहों की पकड़ कसते हुए माधव ने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकाते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे से चिपका लिया और अपने गाल से उसके गाल को सहलाने लगा। लगता है हमारी बीवी कुछ खफा है आज हमसे। राधिका अब भी खामोश रही और उसकी बाहों को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करने लगी। माधव ने एहतियात के साथ पकड़ा था उसे। कमर पर ज्यादा कसाव नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि राधिका चाहकर भी उससे छूट नहीं पा रही थी। उफ, आपकी बाराजगी दिखाने की ये अदा भी कमाल है। आमतौर पर बीवी जब गुस्सा या नाराज होती है तो अपने पति पर चीखती चिल्लाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, पर एक हमारी धर्मपत्नी है जो म्यूट ही हो जाती है, अपने होठों को सीकर खामोशी से अपने पति से दूरियां बना लेती है। राधिका ने अब भी कुछ नहीं कहा और अपनी कोशिशें जारी रखी। माधव ने अब अपने लबों को उसके कान से सटा दिया और धीमे भारी आवाज में सरगोशी करने लगा। कोशिश बेकार है राधा, जब तक मेरी इजाजत नहीं आप मेरी बाहों के घेरे से आजाद नहीं हो सकती। अपने लिए ये संबोधन सुनकर राधिका एकदम से स्थिर हो गई, पर नाराजगी दिखाते हुए उसने अपना चेहरा फेर लिया। अब माफ भी कर दीजिए, मैं बस आपको थोड़ा सता रहा था। देखना चाहता था कि नाउम्मीद होने के बाद जब आपको ये गुड न्यूज मिलेगी तो कैसा रिएक्शन होगा आपका। कल आपने कितना परेशान किया था मुझे, बदले में मेरी तरफ से इतना तो बनता है। माधव की गंभीर आवाज राधिका के कानों से टकराई और वो सर घुमाकर तिरछी पहनी निगाहों से उसे घूरने लगी। बदला ले रहे थे आप मुझसे, आपको पता है क्या हालत हो गई थी उस वक्त मेरी। पहले से कितना नर्वस थी मैं कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, मैं आपकी और मम्मी जी की ख्वाहिशें पूरी कर भी सकूंगी या नहीं। कितनी घबराहट हो रही थी मुझे, और जब आप अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर मेरे सामने आए तो मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी। रोती थी मैं उस वक्त, फिर करते रहते आप मजाक, जी भर कर सता लेते मुझे और ले लेते मुझसे बदला।
अच्छा बाबा सॉरी ना, ज्यादा सेंसिटिव मैटर पर मजाक कर लिया मैंने, पर बस चंद मिनट ही तो सताया था आपको, उसके बाद तो सच बता ही दिया था। माधव के अपनी पैरवी करने पर राधिका गुस्से से भड़क उठी। क्यों बताया आपने इतनी जल्दी, आराम से एक दो महीने बाद बताते, जी भर कर सताते मुझे, खूब अच्छे से बदला लेते। कैसे करता जब आपके चेहरे पर वो नाउम्मीदी, निराशा, दुख और आंखों में आंसू मुझसे एक पल भी देखे न गए। चेहरे पर संजीदा भाव लिए माधव उसकी आंखों में देखने लगा जिसमें नमी मौजूद थी। राधिका भीगी निगाहों से एकटक उसे देखने लगी। माधव ने अब उसे खुद से जरा दूर करते हुए अपनी ओर घुमा लिया और प्यार से उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाने लगा। सॉरी, बस एक छोटा सा मजाक था, जरा सा सताना चाहता था आपको। आप प्रेग्नेंट नहीं ये जानने के बाद जब अचानक आपको पता चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं, उस वक्त आपका रिएक्शन देखना चाहता था। राधिका ने नाराजगी से मुंह फुलाते हुए उसके सीने पर मुक्का मार दिया। बहुत बुरे हैं आप, पर बहुत अच्छे भी हैं। खुद ही उसे मारकर खुद ही उसके सीने से लग गई, बुराई भी की और तारीफ भी। आंखों में आंसू थे तो लबों पर मुस्कान भी बिखरी थी। माधव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये रहे, फिर माधव ने राधिका को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामते हुए बड़े ही प्यार से उसके आंखों को पोंछ दिया। जितना भी रोना था रो लिया आपने, अब आपको बस खुश रहना है। अभी आपके और हमारे बच्चे के लिए आपका स्ट्रेस लेना, उदासी, आंसू बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझी। राधिका ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। माधव ने प्यार से उसके सर को चूम लिया। बहुत कुछ कहना चाहता था वो, पर भावनाएं शब्दों में नहीं एहसासों में बयां हो रही थीं और लब नहीं आंखें कह रही थीं। राधिका, ढाई महीने प्रेग्नेंट हैं आप और आपने अब जाकर टेस्ट करवाए हैं, आपको पहले पता नहीं चला। माधव के सवाल से ज्यादा तो राधिका उसकी बात सुनकर चौंक गई। ढाई महीने, फटी आंखों से वो अचंभित सी माधव को देखने लगी। माधव ने सहजता से हामी भर दी। यस, 10 वीक्स, मतलब ढाई महीने, और अब बस 6.5 महीने और हमें इंतज़ार करना होगा, फिर हमारा बच्चा हमारे पास होगा। पर आपको पहले कैसे पता नहीं चला, मुझे आप में कुछ बदलाव भी नज़र नहीं आया। हर इंसान पर प्रेगनेंसी का असर अलग अलग तरीके से नज़र आता है। जब मैं पिछली बार माँ बनने वाली थी तब तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी, पर इस बार मैं बिल्कुल नॉर्मल थी।
शिखा की शादी के वक्त से थकावट सी महसूस होती थी, भूख भी थोड़ी ज्यादा लगती थी, पर ये कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। शादी की भागदौड़ में थकावट होती ही है और जब ज्यादा काम करती हूँ तो भूख भी ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने इस तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस वक्त मैं इतनी व्यस्त रहती थी कि खुद पर ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। जब इस महीने टाइम निकलने के बाद भी पीरियड्स नहीं हुए तो ध्यान ही सोर गया। याद आया कि शिखा की शादी के वक्त भी पीरियड्स मिस हो गए थे। बस शक ही था मुझे, क्योंकि पीरियड्स मिस होने के अलावा और कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए ऐसे ही अपने शक को दूर करने के लिए मैंने टेस्ट कर लिया था, वरना शायद अभी भी मुझे पता नहीं चलता कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे अंदर एक नन्ही सी जान सांस ले रही है। माधव को भी पिछली बातें याद आ गईं। एक महीना हुआ था शिखा की शादी को और 2 महीने पहले से तैयारियां चल रही थी। सभी तब थक जाते थे, शायद इसलिए उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राधिका ज्यादा थकी थकी सी लगती थी, और शादी के बाद महीने भर का वक्त तो उन्हें शादी की थकान और पेंडिंग पड़े काम करने में ही लग गया था। चलिए, जो होना था हो गया। अब तो हमें पता चल गया है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, तो अब हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने के बाद माधव पल भर ठहरा, फिर आगे बढ़कर राधिका के गाल को अपनी हथेली से धीरे से सहलाने लगा। राधिका भी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी, जैसे उसके बोलने का इंतजार कर रही हो। राधिका, आज से और अभी से आपको खुद का बहुत ख्याल रखना है। वैसे तो मैं और मम्मी होंगे ही, पर हम दोनों सारे वक्त तो आपके साथ नहीं रह सकते। आप बाहर जाती हैं, काम करती हैं, इसलिए आपको खुद का ख्याल रखना होगा। स्ट्रेस तो अब आपको बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना, बस हमारे बच्चे और अपना ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है, समझी? समझ गई, मैं ख्याल रखूंगी अपना भी और हमारे बच्चे का भी। पर डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है ना? राधिका की आंखों में बेचैनी उतर आई। माधव ने गंभीरता से आगे कहना शुरू किया, अभी तो बस ब्लड टेस्ट की ही रिपोर्ट आई है, डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हुई। कल की अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने, आपके सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है अभी आपकी। अब आप आराम कीजिए, सही से खाने पीने और खुश रहने के साथ आपके लिए प्रॉपर रेस्ट भी बहुत जरूरी है। माधव का इशारा सोने की तरफ था। राधिका ने फिर से सर हिलाकर हामी भरी और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी आंखों को मूंद लिया। बाहें माधव की पीठ पर कस गई, शायद कुछ कहना चाह रही थी वो, जिसे समझते ही माधव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई और उसने भी राधिका को अपनी पनाहों में समेट लिया। टू बी कंटिन्यूड।